لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. قرآن کریم کی سورہ مبارکہ الشعراء کا بیان آپ کی خدمت میں جاری ہے اور ہم حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور فرعون کا جو مقابلہ ہے اور جو معرکہ ہے اور جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اسے سورۃ الشعراء میں بیان فرمایا ہے اسے پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی, آپ کو یاد ہوگا جو ابتدائی درس تھے تو اس میں امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اس کتاب کے قصوں کو, قرآن کے قصوں کو, قرآن کی داستانوں کو اس نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ جیسے دوسرے تاریخی واقعات ہیں اسی طرح یہ بھی تاریخی واقعات. قرآن میں قصہ کیسا ہے, تورات میں کیسا ہے, اس کا کمپیریزن کرنا ہے, اس پہ مقالہ لکھنا ہے, ان میں سے کوئی بھی اللہ کی کتاب کا مقصد پورا نہیں کرتا کوئی بھی ان میں سے کام. کیونکہ قرآن مجید اصل میں کتاب ہدایت ہے اپنے پڑھنے والے کی رہنمائی کے لیے. تو کوئی بھی داستان جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں تو اسی نگاہ سے پڑھنی چاہیے کہ اس داستان کے ذریعے اللہ رہنمائی کر رہا ہے. اور تاریخ میں حق و باطل کے جو عظیم معرکے ہوئے ہیں ان میں سے ایک حضرت موسیٰ اور فرعون کا مقابلہ ہے. اور فرعون اتنا طاقتور تھا کہ اللہ نے اسے ان لوگوں میں شمار فرمایا کہ جن کا ذکر کر کے اللہ مکے والوں سے فرماتا ہے کہ تمہاری تو اوقات ہی کوئی نہیں, تم سے کتنے طاقتور لوگوں کو میں نے نیست و نابود کر دیا جب انہوں نے میری طرف سے آنے والی ہدایت اور میرے بھیجے ہوئے رسولوں کا انکار کیا تو میں نے انہیں نیست و نابود کر دیا, تم تو چیز ہی کوئی نہیں. تو کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو ذکر فرمایا قرآن میں اور ہم اس کو اپنی توفیق کے مطابق اس طرح بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس قصے میں حضرت موسیٰ کیا کر رہے ہیں, کیا باتیں کرتے ہیں, کیا دلائل دیتے ہیں, اور فرعون شکست سے بچنے کے لیے کون کون سے پینترے بدلتا ہے, کون کون سے بیان بدلتا ہے, کون کون سی سیاستیں کرتا ہے, لالچ دیتا ہے, دھمکیاں دیتا ہے, تو یہ سارا کا سارا. اور اگر آپ اس کو دیکھیں گے, غور سے دیکھیں گے, تو آپ فرعون کی حرکات کو, اس زمانے کے فرعون کی حرکات کو جب آپ دیکھیں گے قرآن سے جب دیکھیں گے جو اللہ کی طرف سے کتاب ہدایت ہے, تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آج کی دنیا کے فرعون بھی یہی کرتے ہیں. اور یہیں سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ فرعونوں کو شکست دینے کا طریقہ کیا ہے, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ مد مقابل میں اللہ کی ذات پر مکمل ایمان ہونا چاہیے, تب وہ ٹکرا سکتا ہے فرعون کے ساتھ, ورنہ یا بک جائے گا اور یا جھک جائے گا. بکتا کون ہے اور جھکتا کون ہے, یہ دونوں وہ ہوتے ہیں جو ہو سکتا ہے بظاہر عالم کے لباس میں ہو، لیکن اسلام کی تاریخ میں بہت سارے عالم بکے، کچھ کا ہمیں پتہ چلا ہوگا، کچھ کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلا ہوگا کس کس طرح بکے. خود آپ امام حسین علیہ السلام کی داستان میں دیکھیے، عالم بکا ہے عمر ابن سعد، عالم بکا ہے. اور امام سے جو اس کا مکالمہ ہوا تو اس میں امام نے اسے وہی ایسی باتیں کی تھی کہ اگر اس میں ایمان ہوتا اس کا جھکاؤ حتماً امام حسین کی طرف ہو جاتا. امام نے فرمایا تھا کہ تجھے انہوں نے رے کی حکومت کا کہا ہے، میں تجھ سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. یہ جب اپنے آپ سے خود کلامی کر رہا تھا، گویا کچھ اشعار اس نے کہے تھے، اور اس میں کہا تھا کہ رے کی حکومت نقد مل رہی ہے اور حسین کی جنت ادھار ہے، تو کون سا تاجر ہے جو نقد سودے کو چھوڑ کے ادھار اپنے آپ سے ہی کہہ رہا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ انسان کو اپنا اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اگرچہ بہانے لے کے آتا ہے اپنی حرکت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اپنی حرکت کی توجیہ کرنے کے لیے خود سے ہی بہانے گھڑتا ہے، میں یہ اس لیے کر رہا ہوں، میں یہ اس لیے کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں، اور کر دیتا ہے. تو ہم جہاں تک پہنچے تھے، ہم نے یہ آیات پڑھ لی تھی کہ جادوگر جب بہرحال سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے کہا کہ ہم رب العالمین پر، جو رب موسیٰ و ہارون ہے، اس پر ایمان لے آئے، اور فرعون نے پھر ایک چال چلی، پھر بیان بدلا اور کہا کہ میری اجازت سے پہلے ہی تم ایمان لے آئے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موسیٰ تمہارا بڑا ہے، تمہارا استاد ہے، اور اس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، بس اب کہ تمہاری سازش، تمہارا بھانڈا میں نے پھوڑ دیا، خود ہی بنا کے تمہارا بھانڈا میں نے پھوڑ دیا ہے، تمہارا راز کھل چکا ہے، اب ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، اور میں تمہارے ہاتھ اور پیر مخالف سم سے کٹوا دوں گا، اور میں اس کے بعد میں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا. اب یہ ہے فرعون، سامنے والے میں اگر ایمان نہ ہو تو وہ گھبرا جائے گا، لیکن اگر سامنے والے میں ایمان ہو تو جواب یہ ہے، لا ضیر، کوئی پرواہ نہیں، کوئی حرج نہیں. آپ یقین کریں، بہت بڑی تعداد نہیں، چند سو، ہزار بھی نہیں کہہ رہا میں، چند سو یا شاید اس سے بھی کم، اگر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں نا جو یہ بول سکے فرعون کے آگے لا ضیر، تو بھی پاکستان کی موجودہ صورتحال کروٹ بدل لے گی، کیونکہ طاقت کے سامنے، فرعون کے سامنے، استبداد کے سامنے اس کے پاس ہتھکنڈے بہت ہیں. ہم نے تجھے پالا تھا، تو نے ایک بندہ بھی مارا ہوا ہے، یہ سر فرموشی کر رہا ہے، کس رب العالمین کی بات کر رہا ہے، جادوگر ہے، ہر جگہ پہ اس نے اپنا بیان دیا، جادوگروں کو بلاؤ، اس کو شکست دینی ہے. جب جادوگر سجدے میں گر پڑے، کہتا تم سارے ملے ہو، تمہاری سازش ہے، تمہیں چھوڑوں گا نہیں، کیونکہ اس نے ٹھیک نہیں ہونا، اس نے ڈنڈے سے ہی جانا ہے، اس نے عصائے موسیٰ سے ہی جانا ہے، اور اس کے لیے ایمان چاہیے جو انسان کو ان کے سامنے کھڑا کر سکے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تبصرے کرنے والے، ایکسپرٹ انالیسس کرنے والے، باتیں کر کر کے ٹی وی کی سکرین توڑنے کے قریب لے جانے والے، یہ بہت ہیں، لیکن میدان میں کھڑے ہونے والے نہیں. تو انہوں نے کہا تھا کوئی حرج نہیں، ہم اپنے رب کے حضور لوٹ جائیں گے، تو نے مار دیا تو ہم اپنے رب کے حضور لوٹ جائیں گے. آپ جانتے ہیں یہ کیا جملہ ہے، یہاں پر ہے انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں گے، تو نے اگر ہمیں قتل کر دیا. یہ بھی قرآنی جملہ ہے، اور ایک اور قرآنی جملہ ہے جو ہم کربلا کے راستے میں امام حسین علیہ السلام سے سنتے ہیں. آپ سب یہ روایت سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام مکہ سے عراق کی طرف सफ़र में है, रास्ते में घोड़े पर सवार हैं, जनाब अली अकबर इमाम के फर्जंद साथ साथ चल रहे हैं अपने बाबा के, और थकावट से या बहरहाल सफ़र की मशक्क़त की वजह से इमाम हुसैन की आंखें घोड़े पर बैठे बैठे थोड़ी देर चल घोड़ा चल रहा है बंद हो जाती, ऊँग आ जाती, लेकिन फिर अचानक आंखें खोलते हैं और तीन मरतबा ये कुरानी जुमला बोलते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमने इस जुमले को, जैसे हमने कुरान को मुर्दों के लिए कर दिया मखसूस, इस जुमले को भी मुर्दों के लिए कर दिया। मौत की खबर मिले तो क्या कहना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, हालांकि ये असल में जुमले को देखा जाए तो ये जिंदा करता है बंदे को, क्योंकि कुरान में ये मुर्दे पे नहीं आया। कुरान में तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ रसूल वबशिर साबिरीन, उन सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए, अल्लदीन इदा असाबत हुम मुसीबत, वो लोग के जिन पर जब मुसीबत आन पड़ती है उस वक़्त ये जुमला बोलते हैं, इतनी बड़ी मुसीबत है कि शायद जान चली जाए, तो कहते हैं हम, अब ये ज़रा गौर से सुनिएगा और जनाब अली अकबर क्या कहते हैं, बिल्कुल वही बात है जो कुरान में, क्योंकि हम अपने अल्लाह की तरफ से जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, उसकी राह पे चल रहे हैं, तो अगर इस राह में हम मारे जाएं तो कौन सी बड़ी बात है, हम तो है ही उसी के, उसकी राह में काम आ जाए। इन्ना लिल्ला, पहला क्या है, यकीनन हम अल्लाह के, ये इंसान के खौफ को भगा देता है अगर इस जुमले की रूह के साथ पढ़ा जाए, इन्ना लिल्लाह। कहता है मैं क्यों भागूं, मर जाऊंगा तो क्या, वह इन्ना इलैहि राजिऊन, हमने उसी की तरफ पलटना, यहां से भाग जाऊंगा कब तक भागूंगा, जाना तो उसी की बारगाह में है, तो क्यों ना उस रास्ते से जाऊं, वो वाली मौत हासिल करूं कि जिससे बेहतर मौत मेरे अल्लाह ने नहीं बताई, और उसे शहादत कहते हैं। ये असल में शहादत का, वैसे तो ओवरऑल हर मुसीबत पर, लेकिन हमने दायरा तंग कर कर करके सिर्फ किसी के मरने की इतला मिलती है, हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आके खोली और तीन मरतबा यही जुमला बोला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो फर्जंद इमाम हुसैन शबीह पैगम्बर इस्लाम अपने बाबा से सवाल करते हैं कि बाबा आपने कलमा इस्तिरजा, यानी वही रुजू अल्लाह की तरफ पलटने वाला, इसे कलमा इस्तिरजा का नाम दिया जाता है, आपने ये पढ़ा है। तो इमाम हुसैन ने फरमाया कि मेरी थोड़ी देर के लिए आँख लगी तो मैंने हातिफ़ गैबी की आवाज़ सुनी है कि ये काफिला अपनी कत्लगाहों की तरफ जा रहा है, यानी मुझे बताया गया कि हम अपनी शहादत वाली जगहों की तरफ जा रहे हैं, इसलिए मैंने ये जुमला पढ़ा। जब उन पर मुसीबत आती है तो क्या कहते हैं, रास्ता नहीं बदल लेते, उधर ही चलते रहते हैं, कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये जुमला पढ़ा और फिर जनाब अली अकबर से जब बात की तो अली अकबर ने सवाल किया कि बाबा, ये बात सुनी अपने बाबा की, तो फरमाया बाबा क्या हम हक पे नहीं, क्योंकि इस जुमले को बोलने की शर्त यह है कि अल्लाह की राह पे चल रहे हो, किसी और राह पे चलने वाला ये नहीं कह सकता इन्ना लिल्लाह, अल्लाह ही की राह पर चल रहे हो तब कह सकता है हम अल्लाह के, ना कि किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो लेकिन जुमला ये वाला बोले। तो हज़रत अली अकबर ने सवाल किया कि बाबा क्या हम हक पे नहीं हैं, और ये सवाल इसलिए नहीं था कि अली अकबर को पता नहीं था कि मेरा बाबा हुसैन हक पर है या हक पर, ये तरद्दुद था, बाज़ सवाल जानने के लिए नहीं होते, बाज़ सवाल ताकीद के लिए होते, इनको ये कहना चाहते थे कि क्योंकि हम हक पर हैं, फरमाया फिर इसकी क्या परवाह कि मौत हम पे आ पड़े या हम मौत पर, असल में ये जज्बा है, असल में करबला इस चीज़ को पैदा करने का नाम है, अगर करबला सुन सुन के ये चीज़ पैदा ना हो रही हो तो बताने वाले खयानतकार हैं। जो करबला बता रहे हैं और ये जज्बा पैदा नहीं हो रहा, इसको उजागर नहीं कर रहे, बल्कि कह रहे हैं रो ताकि तुम्हारे गुनाह बख्शे जाए, रो ताकि तुम्हारी हाजात पूरी हो, यह ख्यारत कर रहे। ये उस दरिया का कि जो बड़े बड़े जालिमों के महल्लात को बहा के ले जा सकता है, उस दरिया को कंट्रोल कर रहे ताकि जालिमों की तरफ रुख ना करे, अपने आप में लगा रहे, उसकी ताकत पहले ही खत्म हो जाए, उसकी सारी तवज्जो हाजात और उसकी तरफ हो जाए, और जो हुसैन से सबक सीखना है वो न सीखे। ये ख्यानत है बहुत बड़ी, और इस ख्यानत का जवाब अल्लाह की बारगाह में देना पड़ेगा। इतनी बड़ी कुर्बानी, ये तो अमानत थी, इस अमानत के जरिए तुम हर जमाने में अपनी कौम को उस जमाने के फिरौनों और यजीदों के सामने खड़ा कर सकते थे। तुमने इस तरह बयान किया कि कौमों की तवज्जो ही और तरफ लग गई, और जो हुसैन से जज्बा लेना था वो जज्बा ही खत्म हो गया। ये ख्यानत। तो जादूगरों ने कहा कि ये जुमला याद रखिएगा, आगे दोबारा आएगा एक दफा, कि हमें तो अब ये तमा है, तू कर ले जो करना है, मार दे, हम रब की तरफ वापस जाने वाले हैं, और हमें तो बस अब ये लालच है कि हमारा रब हमारी पिछली खताएं माफ कर। इस बात को पसंद करके कि हम इतनी खतरनाक सिचुएशन में पहले ईमान लाने वाले, पहले फिरौन को ललकारने वाले हैं मूसा की दावत पर। फिर अल्लाह ताला फरमाता है वअहयना इला मूसा, अब यह दास्तान आगे शुरू होती है, वअहयना इला मूसा, और हमने मूसा की तरफ वही की, अन असर बिइबादी, कि आप रात के वक्त मेरे बंदों को लेके निकल जाएं, लेकिन ये भी बता दिया इन्नकुम मुत्तबाउन, आपका ताक़ुब किया जाएगा, ये फिरौन और फिरौनी छोड़ेंगे नहीं, इनसे बर्दाश्त नहीं होगा कि इतना अरसा जिनको हमने, जिनसे नौकरियां ली हैं, जिनको ग़ुलाम बना के रखा है, ये हमारी आंखों के सामने निकल जाए, आज़ाद हो जाए, इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब जी आगे सुनिए आयत नंबर 53, فأرسل فرعون في المدائن حاشرين, फिरौन में, मदाइन मदीने की जमा है, शहरों में जो भी उसकी सल्तनत में शहर थे उसने सब में अपने हरकारे भेजे, और कहा क्या, अब ज़रा हालात ख़राब हो रहे थे, बनी इसराइल निकल पड़े थे, ठीक है, तो फिरौन को इस बात को यकीनी बनाना था कि जो बाकी पब्लिक है वो कहीं मेरे ख़िलाफ़ ना हो जाए और इक्तदार पर मेरी गिरफ्त ढीली ना हो जाए। तो उसने क्या किया, उसने कहा इन नहा, उन्होंने जाने वालों ने क्या ऐलान किया, ये वाला काम आजकल मीडिया करता है, और उस ज़माने में चूंकि इस तरह मीडिया नहीं था, तो उसने जो बंदे भेजे उन्होंने जाके क्या शहरों में ऐलान किया, इन हाउला लशिरज़िमतुन क़लीलून, बनी इसराइल बहुत बड़ी तादाद में थे, लेकिन फिरौन के लोगों ने जाके दूसरे शहरों में कहा कि ये जिन्होंने ये फितना फसाद किया है मूसा के बहकावे में आकर, मूसा जो फसाद कर रहा है और सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है और हमारे आवाम में इंतशार पैदा कर रहा है, तो ये चंद लोग हैं, आपने परेशान नहीं होना। आगे सुने, वह इन्नहुम लना लगाइदून, और हम बड़ा बर्दाश्त कर रहे हैं लेकिन मूसा बाज नहीं आ रहा, फितने पे फितना करता चला जा रहा है, और हमें ये गुस्सा दिला रहे हैं, वह इन्ना लजमी उन हाजिरून, लेकिन फोर्सेस पूरी तरह अलर्ट हैं, मुल्क कौम के वसी तर मफाद में हम कोई खिलाफ अमल मूसा जैसे फसादी को, दहशतगर्द को, आज के लफ्ज़ों में, आज की टर्म में, हम इस दहशतगर्द को कोई खिलाफ कानून हरकत नहीं करने देंगे, और फिरौन की अफवाज पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से अलर्ट है, और आवाम जो है वो बिल्कुल मुतमईन रहे कि हम आखिरी कतरा खून तक आपका दिफा करेंगे मुल्क और कौम के वसी तर मफाद में। फिरौन, वो जोक ज़्यादा है, लेकिन इसके बंदे जाके आवाम से क्या कह रहे हैं, छोटा सा ग्रुप है, आप परेशान मत हो, हम इन्हें कंट्रोल कर लें, अलर्ट है हम, और हालात को देखते हुए हमने, ताकि आपकी जानें महफूज रहे, हमने एमरजेंसी लगा दी है। थोड़ा और कदम बढ़ा के आर्जी तौर पर हमने आइन मुअत्तल कर दिए, ताकि जो बदमाशी करनी है आराम से कर सके। हम ये नहीं कहते, लेकिन करते यही। तो हम व इन्ना लजमी उन हाजिरून, आप इन जुमलों पे गौर करें, ये बिल्कुल आज वाले जुमले, हम बिल्कुल अलर्ट हैं, ये इसका तर्जमा इन्होंने किया है, और हम सब पूरी तरह मुस्तैद हैं, ये अपनी आवाम को मैसेज दे रहा है। ऐसे ही जुमले आज भी बोले जाते हैं। आजकल मीडिया क्या करता है, मिसाल के तौर पर एक पार्टी का जलसा हो रहा है जो हमारी मनपसंद नहीं है, हम साहिबान इक्तदार हैं, तो उधर लोग बहुत आ रहे हैं, तो हम अपने बंदों से क्या कहेंगे कि जलसे से पहले की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बना लो जब थोड़े से बंदे आए हों, लेकिन उसको चलाना दोपहर के टाइम है। अब बताइए, देखो उरूज का टाइम है और यहाँ बंदा कोई नहीं बैठा, और पब्लिक पब्लिक मान लेती। असल मसला यहाँ पर है कि जब हुक्मरान पब्लिक को अपने प्रोपेगेंडे में ले आए, तो कोई भी तहरीक जो उठी होती है उनके खिलाफ वो नाकाम हो जाती है। चाहे वो फिरौन की जेल हो, चाहे पाकिस्तान की जेल हो, जेलों में डाल देते हैं। अभी तक कितने जेलों में पड़े हुए, फर्क नहीं होता। और अगर किसी जगह पर आवाम थोड़ी सी होशियार हो जाए, थोड़ी सी बेदार हो जाए और थोड़ी सी जुरतमंद हो जाए, तो फिर फिरौन हो या फिरौन से भी कोई ताकतवर हो, उसका तख्ता उलट जाता है। और अगर इस मुल्क में भी, इस मुल्क में भी ऐसा होना है, तो एक तादाद जुरतमंद लोगों की वो जुरत कहीं से भी ले लें। कुरान कहता है कि वो असल जुरत ईमान से मिलती है। बाज़ लोग अपने कौमी जज्बात में भी मरने को तैयार हो जाते हैं, बाज़ लोग अपनी ज़ाती रंजिशों पर लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह चाहता है कि ज़ाती रंजिश पर लड़ जाओगे, मर जाओगे, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। अपने जो तुम्हारे कौम और कबीले के तासुब हैं उन पर लड़ मर जाओगे, कुछ नहीं है मेरे पास तुम्हारे लिए, बल्कि शायद सजा दूँ। लेकिन एक तरीका जो तुम्हारे लिए तुम्हें जन्नत के काबिल बनाएगा और तुम्हें मेरे लिए बहुत, मेरे नज़दीक बहुत मोहतरम कर देगा, वो है मेरी खातिर फ़ी सबीलिल्लाह अल्लज़ीन जाहदू फ़ी सबीलिल्लाह, वो लोग के जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं। तो ये थोड़े से लोग हैं, ये छोटी सी एक जमात है, और इन्होंने हमें बहुत गु़स्सा दिलाया है, हमने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन अब बात बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। अब हमने फोर्सेस को अलर्ट कर दिया है, अब हम मूसा को इजाज़त नहीं देंगे कि इससे ज़्यादा फसाद फैलाए, और हम एक्शन करेंगे। तो अल्लाह फरमाता है फ़अखरजनाहुम मिन जन्नातिन व उयून, इधर से फिरौन ये कर रहा था, लेकिन हमने उसे क्या किया, बागात से और चश्मों से, जिसमें वो बड़ी ज़बरदस्त जिंदगियां गुजार रहे थे शान शौकत वाली, निकाल दिया हमने फिरौन को और उसकी कौम को, उसकी आल को, उन बागों में से और उन चश्मों में से, व कुनूज़िन व मकामिन करीम, और ख़जानों में से जो उसने लूट मार करके भरे हुए थे, वो ख़जाने भी उससे छीन लिए हमने, व मकामिन करीम, और वो जो ज़बरदस्त उसकी रिहाइश गाहें थीं उसकी और उसके साथियों की, उन सब से अल्लाह ने उसको बाहर निकाल दिया। कदालिका, इसी तरह वह औरतनाहा बनी इसराइल, और वो जो ग़ुलाम बना के रखे गए थे बनी इसराइल, इन तमाम चीज़ों का वारिस हमने उस बनी इसराइल को बना दिया। ये वही बात है जिसको सूरह कसस में अल्लाह ताला फरमाता है कि वनुरीदु अन नमुन अलल्लज़ीना इस्तुदईफू वनजअलुहुम अइम्मतन वनजअलुहुम अलवारिसीन, हम चाहते हैं कि वो लोग जिन्हें कमज़ोर कर दिया गया है उन पर एहसान करें और उनको इमाम, लीडरशिप उनके हाथ में दें और उनको ज़मीन के वारिस बनाए, और फिरौन को और हामान को उनके ज़रिए, तवज्जो फरमाएं, उनके जरिए, न कि वो घर बैठे रहे मुस्तज़फीन, निकले ही नहीं, कुछ भी ना करें और अल्लाह फिरौन और हामान को फना कर दे, नहीं, बल्कि उनके जरिए हम फिरौन और हामान और उनके लश्करों को वो दिखाएं जिससे वो बचते हैं और जो मंजर वो नहीं देखना चाहते कि अवाम इकट्ठी होकर उठ के खड़ी हो और इनकी और इनके लश्करों की धज्जियां उड़ा दे। हम चाहते, अल्लाह चाहता है कि कमजोर कर दिए गए लोगों से के जरिए से फिरौन और हामान और उनके लश्करों को शिकस्त दे। और आपकी खिदमत में ये अर्ज कर दूं कि फिरौन और हामान और उनके लश्करों से बहुत ज्यादा आसान है आज इस कौम के लिए अपने फिरौनों को शिकस्त देना, उनसे ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर एक चंद पाकिस्तान की आबादी कितनी है, 24 करोड़, 25 करोड़, 1 करोड़ बंदा चाहिए, नहीं, 50 लाख चाहिए, नहीं, चाहिए वो जिस तरह का ईमान और जिस तरह की जज्बा कुरान डिस्क्राइब कर रहा है फिरौन के सामने, एक मूसा का और एक, ये वही मूसा है जो अल्लाह को पहले कह रहे थे कि या अल्लाह मुझे मार देना, उन्होंने, मेरा सीना तंग हो रहा है, फिरौन बहुत ताकतवर है, लेकिन जब फिर जिम्मेदारी दी अल्लाह ने और जिम्मेदारी ले ली, फिर फिरौन कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, वो अपनी बात कंटिन्यू कर रहे हैं। और जब मुकाबला होता है तो जादूगर क्या करते हैं, ईमान उनसे क्या करवाता है, तो 50 लाख भी नहीं, 25 लाख भी नहीं, 10 लाख भी नहीं, मैं कहता हूँ अगर सिर्फ 1 लाख बंदा पाकिस्तान में, 1 लाख बंदा, उसे भी कम कर दो, 50,000 बंदा, इन फिरौनों के लिए पाकिस्तानी फोर्सेस 50,000 तो क्या 500 बंदा नहीं मार सकते, नहीं मारेंगे, और वो अवाम के साथ होंगे, लेकिन वो बंदे कहां से आए, ये वही बंदे ये काम कर सकते हैं कि जो फिर कहे फिरौन से कोई हरज नहीं, हमने अपने रब के पास जाना है, तू कर ले जो करना, अपनी जान के सौदे के लिए तैयार हो। खूब जो गैर मुस्लिम है, गैर मोमिन कौमें हैं, वो और तरीक़ों से अपनी कौमों को, अपनी आवाम को चार्ज करते हैं, कभी जनाब महंगाई की वजह से, जैसे अभी आज भी कोई दोस्त कह रहा था कि थोड़ा टाइम रह गया जब बिजली का यूनिट इतने में पहुंचेगा, ये निकलेंगे, भूख की वजह से निकल आएंगे, गैरत की वजह से नहीं निकलेंगे, चूंकि जिस तरह हज़रत मूसा जिनको लेकर साथ चले थे, जिस तरह उन्होंने फिरौन के ज़ेरे साया परवरिश पाई थी, इधर भी अवाम ने आज की दुनिया की वो ताकतवर कौमों के ज़ेरे साया तरबियत पाई है और उनकी एजुकेशन हुई है, तो उनमें वो जज्बा पैदा नहीं हो सकता जो अल्लाह की किताब के ज़रिए पैदा होता है। आगे बढ़ते हैं, कदालिका व औरथना बनी इसराइल, इसी तरह अल्लाह फरमाता है और हमने वारिस बना दिया उन चीज़ों का बनी इसराइल को, फ़अतबउहुम मुशरिकीन, तो उन्होंने उनका पीछा किया, जैसे ही सूरज तुलू हुआ फिरौन ने अपने लश्करों को हुक्म दिया कि बनी इसराइल का पीछा करो, सुबह होते ही उनके ताकुब में निकल पड़े। अब क्या पता था फिरौन को कि असल में ये उनके पीछे नहीं जा रहा बल्कि मौत इसको हांक के ले जा रही है वहां पर। अल जमान, जब ये दोनों जमातें एक एक आयत में, एक एक मंजर में जो अल्लाह बता रहा है, दर्स है, इबरत है। अब देखें क्या हुआ, अल्लाह ताला फरमाता है जब वो दोनों जमातें एक दूसरे को देखने लगी, यानी फिरौन के लश्करों को बनी इसराइल दिखाई देने लगे और बनी इसराइल को दूर से फिरौन का लश्कर आता दिखाई दिया, जब ये दोनों एक दूसरे को देखने लगे, قال اصحاب موسى, मूसा के साथियों ने कहा, इन्ना लमुद्रकून, मरवा दिया मूसा तूने, ये फिरौन के जेर साया परवरिश पाई हुई कौम है, गैरत इनकी खत्म हो गई, इतने सालों की गुलामी से मूसा लेकर निकले हैं और थोड़ा सा थ्रेट आया तो कह रहे हैं मूसा तूने मरवा दिया। बाज़ तारीखी कुतुब और रिवायत मिलता है कि उन्होंने मूसा से कहा, मूसा यहाँ तो कब्र भी नहीं मिलनी, वहाँ मर रहे थे तो कम अज़ कम कब्र तो मिल जाती थी, यहाँ पर जहाँ तू मरवा रहा है हमें, आगे समंदर है, पीछे फिरौन का लश्कर है, तूने बेड़ा गर्क करवा दिया। क़ाला कल्ला, मूसा ने कहा हरगिज़ नहीं, इन्ना मा'िया रब्बी, यकीनन मेरे साथ मेरा रब है। अल्लाह ने कोहे तूर से भेजते वक्त मूसा और हारून से कहा था जाओ फिरौन के पास, इन्नी मा'अकुमा अस्मा व अरा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुन रहा भी हूँ और देख रहा भी हूँ, तुम जाओ मत डरो फिरौन से, और जो मैं कह रहा हूँ जाके कहो उससे। और अल्लाह इतना करीम है, फिरौन की भी हिदायत चाहता है, इतने बड़े बदमाश की, इतने बड़े जालिम की। मूसा और हारून से क्या फरमाया था कि जब फिरौन से जाना तो नरमी से बात करना फिरौन से, अल्लाह चाहता है क्योंकि बंदे अगर गुस्से से बोले तो अगला तो पहले इतना मुतकब्बिर और गुस्से में आ जाएगा, उससे नरमी से बात करना शायद बेहतरी की तरफ आ जाए। फिरौन के लिए भी अल्लाह ताला का ये अंदाज है। तो काला कल्ला कहने लगे, मूसा कहने लगे हरगिज नहीं, इन्ना मा'िया रब्बी सयहदीन, यकीनन मेरा रब मेरे साथ है और जल्द ही वो मेरी हिदायत करेगा, यानी यहाँ से निकलने का तरीका भी मुझे गाइड करेगा इस सिचुएशन से। फ़ौहैना इला मूसा, और अल्लाह ने ऐसा ही किया तो हमने मूसा की तरफ वही भेजी, अनिद्रिब बिअसा कल बहर, कि तू अपने असा के ज़रिए समंदर पे मार, अपने असा को समंदर पे मार। अब अल्लाह के काम देखे, एक वक्त में, अलबत्ता वो वाक़िया इसके बाद है तारीख़ी एतबार से, वो वाक़िया इसके बाद है कि जब बनी इसराइल सहरा में भटक रहे थे तो इनको पानी की तलब हुई, तो अल्लाह ने मूसा से फरमाया पत्थर पे असा मार, तो पत्थर पे असा मारा तो जहाँ पानी नहीं था वहाँ से पानी निकल आया, और यहाँ कह रहे हैं पानी पे असा मार तो जहाँ पे पानी था वहाँ पे खुश्की हो गई। फ़ौहैना इला मूसा, तो हमने मूसा की तरफ वही की, अनिद्रिब बिअसा कल बहर, कि तू अपने असा से इस समंदर पे ज़र्ब लगा, फनफलका, तो समंदर फट गया, फ़काना कुल्लु फिरकिन, और वो जो दो टुकड़े हुए उसके वो ऐसे लग रहे थे कत्तौदिल अदीम, जैसे बड़े बड़े पहाड़ हैं, चट्टाने लहरें मौजें उठाता हुआ समंदर एक तरफ और आधा एक तरफ, और बीच से पानी ने हटकर रास्ता बना दिया। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है व अज़लफ़ना थम्मल आखरीन, आप गौर फरमाइए, अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि वो करीब आ गए, दूसरा गिरोह भी करीब आ गया, अल्लाह फरमाता है हमने दूसरों को भी फिर करीब कर दिया, यानी वो भी फिरौन भी अपनी ताकत के नशे में इन्हें पकड़ने के लिए बिल्कुल करीब आ गया। जब वो करीब आ गया तो हमने क्या किया, वह अंजैना मूसा व मन माअहू अजमाइन, और हमने मूसा और जो मूसा के साथ थे उन सबको निजात दे दी, बच्चे बूढ़े बूढ़ियाँ कमज़ोर सारे गिरते पड़ते गुजर गए और पार कर गए, और पीछे रह गए पावरफुल फिरौन। अब ये रिवायात में तारीख में कि फिरौन अंदर घुसने से झिझक रहा था तो किसी ने उसे पंप किया कि तू भी तो रब है, मूसा का रब जो है वो ले जाए तो तू हमें नहीं लेके जा सकता। बाज दफ़ा मुरीद पीरों का बेड़ा गर्क करते, फिर थोड़े ब्रेक मारने लगते हैं कि यार काम ख़राब है आगे, लेकिन जब मुरीद पंप करते हैं वो अपनी इज्जत बचाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इसको भी किसी ने कहा कि रब और ये अगर निकल तो क्या मुंह लेके जाएंगे पीछे, क्या बताएंगे बनी इसराइल किधर गए, हमारे बात वाले शायद ही रहेगी, तो आप घोड़ा डालें अंदर। फिरौन भी अंदर घुसा, और जब ये सारा लश्कर मैदान में पहुंच गया तो अल्लाह ताला ने बटन दबा दिया पानी का और ये सारे के सारे उस पानी में गर्क हो गए। और ये भी आप देखें कुरान मजीद के کی خبروں کے معجزات میں سے ایک معجزہ اسی فرعون کا مسئلہ ہے کہ اس کی لاش کو قرآن نے فرمایا ہے، اس نے جب یہ غرق ہونے لگا، جب یہ ڈوبنے لگا، یعنی وہ ٹائم آ گیا جب توبہ کا دروازہ اختیار ہوتا ہے، جب اختیار چلا جائے انسان سے، پھر کہے یا اللہ توبہ، تو پھر توبہ نہیں ہوتی. جب اس کے ساتھ یہ ہو گیا، غرق ہو رہا تھا، تو کہتا ہے میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آیا. اللہ نے کہا اب نہیں، اب یہ تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے. وہاں پر پھر آیت ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، بس آج کے دن ہم تجھے تیرے بدن کو نجات دیں گے، تیری جو باڈی ہے اس کو ہم نکال لیں گے. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تیرا یہ جسم بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی بنے. اور یہ فرعون، یہ برآمد ہوا اس کی حنوط شدہ باڈی، انہوں نے حنوط کر دی اس کی عوام نے، اور بہرحال جدھر بھی کیا. بعد میں یہ جب احرام وغیرہ، احرام مصر اور یہ دریافت ہوئے، تو اس فرعون کا جسم جب ملا اور اس پر ریسرچ کرنے والوں نے ریسرچ کی کہ یہ کس زمانے کا تھا، تو وہ اس نتیجے میں پہنچے کہ یہ وہی فرعون ہے جو حضرت موسیٰ کے مقابلے پر آیا تھا اور دریا میں غرق ہوا تھا. اور قرآن مجید کی وہ آیت بالکل اسی طرح حق ثابت ہوئی کہ ہم آج تجھے بچائیں گے، لیکن تیرے بدن کو، تو تو مرے گا، تیرے بدن کو ہم رکھ لیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے تو نشانی بن جائے. لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ جنہوں نے ریسرچ کی ان کے لیے بھی کوئی عبرت کا باعث، جب بندہ ڈیٹ ہو جائے تو پھر عبرتیں سامنے ہوتی ہیں، لیکن ان کی عبرت چھوڑ کر اور سوراخوں میں لوگ گھستے ہیں. وہ ایک ہمارے پاکستان کے شاعر ہیں، مزاحیہ شاعری بھی کرتے ہیں، اردو کی بھی اور پنجابی کی بھی، انور مسعود، ان کا اسی موضوع پر ایک بہت زبردست قطعہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اجڑا سا ایک نگر ہڑپا ہے جس کا نام، ہڑپا کا پتہ آپ، آثار قدیمہ، جناب بڑا ادھر سے کلچر، جناب بڑی کلچرل چیزیں، ان کا کلچر یوں تھا، جو لوگ یہاں پہ رہتے تھے وہاں سے ایسے برتن نکلے ہیں، بڑا ان کا سیوریج سسٹم بہت زبردست تھا، یہ تھا وہ تھا. تو وہ، اب قرآن تو کہتا ہے ان بستیوں کو دیکھو اور عبرت لو، کبھی یہ بڑے آباد تھے، یہ بڑے طاقتور تھے، کہاں چلے گئے، اور تمہارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے. تو انہوں نے اس پہ شعر لکھا ہے کہ اجڑا سا ایک شکستہ شہر، کریہ شکستہ، ٹوٹی ہوئی بستی، اس کریہ شکستہ ہو شہر خراب سے عبرت کی ایک چھٹانک برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا بنوں کے حساب سے. اتنی ریسرچ، یہ کیا کرتے تھے، یہ کیسے رہتے تھے، یہ کیسے سوتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیا ان کی فلان، یہ سارا ہو رہا ہے، اور عبرت کی ایک چھٹانک بھی. پورا محکمہ آثار قدیمہ، اس کا اصل میں نام ہونا چاہیے تھا محکمہ عبرت، ہونا چاہیے تھا نا، قرآنی نام یہ بنتا ہے. جتنے بھی آثار قدیمہ ہیں ان کو تبدیل کرنے والے محکمے کا نام کیا ہونا چاہیے؟ محکمہ عبرت، ٹھیک ہے نا. لیکن جناب آثار قدیمہ کا محکمہ بڑا پریزرو کر رہے ہیں، یہ فلان ہے، یہ عبرت کی چھٹانک برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے. جیسے میں نے کہا نا، کربلا کا رخ موڑ دیا، بجائے کہ مجاہد پیدا ہو، بجائے کہ جان پہ کھیل جانے والے پیدا ہو، اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دینے والے پیدا ہو، رو رو کے اپنی دنیاوی حاجات پوری کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں. سارا سال انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ پہلے عشرے میں حاجات پوری، حاجات کون سی ہیں؟ یا تو حاجات بھی ہوتی نا کہ پروردگار مجھے کوئی دین کی خدمت کی توفیق دے، مجھے اللہ تعالیٰ غیبت سے چھٹکارا دے دے، مجھے اللہ تعالیٰ بس حرام آ جاتا ہے کبھی کبھی، مجھے اس سے چھٹکارا دے دے. نہ، نوکری لگ جائے، بچے کا رشتہ ہو جائے، بچی کا رشتہ ہو جائے، پیٹ کی درد، کولیسٹرول کنٹرول ہو جائے، یہ امام حسین کے یہ مانگا جا رہا ہے. یعنی جو جس کو شاہین کی پرواز دینی تھی، جس امام حسین نے، اس کے ذریعے چھوٹی چھوٹی دنیاوی معاملات مانگے جا رہے ہیں، یہ انحراف ہے. مراد یہ نہیں ہے کہ یہ ان کے وسیلے سے مثلا یہ دعائیں نہ کی جائیں، مراد یہ نہیں ہے، لیکن یہی رہ جائے اور جو وہ سکھا کر گئے وہ بھول جائے لوگوں کو، اس کی بات آئے تو کہیں وہ تو امام زمانہ نے کرنا ہے، ہم نے تھوڑی کرنا ہے. सारे रास्ते ऐसे बना दिए कि दलायल भी उनको दे दिए कि तुम्हारा काम ये नहीं है, तुम तो दुनिया में खाने पीने आए हो और छुट्टी मनाने आए हो वीकेंड पे या बाहर सैरें करने आए हो, ये जो लड़ाई जो अदल कायम करना है ये इमाम ज़माना ने करना है, तुम अल्लाह के लाड ले हो, अल्लाह तुम्हें तकलीफ़ें उठाते नहीं देख सकता। इमाम पहले रसूल पाक से तकलीफ़ें उठवाई, उनसे दुश्मनी थी, फिर आइम्मा से तकलीफ़ें उठवाई, उनसे दुश्मनी थी, तुम बड़े लाड ले हो, तुम्हें अल्लाह तकलीफ़ नहीं देख सकता, तुम खाओ पियो मौजे करो, हाजात लो अपनी और बख्शिश करवाओ, देखे खा के गुनाह माफ़ कराओ और लड़ेंगे आके इमाम ज़माना। ये नज़रिया बहुत से लोगों का, उनसे अल्लाह को दुश्मनी है, हम लड़ लें। क्यों ऐसे नज़रियात क्यों आम होते हैं? जब अल्लाह की किताब निकल जाती है हमारे निसाब से, वो दीनी निसाब जो हमें पढ़ाया जा रहा है, जब अल्लाह की किताब उससे माइनस हो जाए फिर यही होता है। क्योंकि अगर अल्लाह की किताब पढ़ाई जाए तो अल्लाह की किताब कहती है मैंने सारे नबी क़याम अदल के भेजे, तो फिर कौन है जो कहे मैं नबी का पैरोकार हूं और अदल के क्याम के लिए कोशिश न करे, मुनाफिक है वो। कहे मैं नबी का पैरोकार हूं लेकिन अदल के लिए उसे कोई फिक्र ना हो, मुआशरे में होते जुल्म की परवाह ना हो, मुनाफिक है ये। मुनाफिक सिर्फ पिछले जमाने में नहीं थे, आज भी है। या जाहिल है, उसे बताया ही नहीं गया, और या फिर मुनाफिक है, पता है लेकिन करता नहीं। तो कम से कम जो इस तरह का दीन बताते हैं, उन्होंने एक दफा कुरान पढ़ा होगा ना कि अल्लाह ने सारे नबियों को भेजने का मकसद क्या बताया, क़याम अदल, तो इसके बावजूद भी अगर वो नहीं बात करते, इसका मतलब मुनाफिक है। और मीठी मीठी बातें करो ताकि पब्लिक तुम्हारी बातें सुने और रेटिंग्स भी बड़ी सही तरह हो, चुटकुले लगाओ, मीठी मीठी बातें सुनाओ, बैठे बैठे जन्नत में पहुंचाओ, मुजर्रब अमल बताओ जिससे हर तमन्ना पूरी होती है, और बाहर मुआशरे में जो मर्जी होता रहे, वक्त के बदमाश जो मर्जी करते रहे, जुल्म करते रहे, तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं है। किसी की लोगों की इज्जत महफूज ना हो, लोगों के घर महफूज ना हो, तुम्हें कोई परवाह नहीं है। तुमने सिर्फ मौला के फजाइल जब सुनने ना, मौला ने फरमाया था कि एक यहूदी औरत की पाजेब उतार के ले गए, कोई गैरत से मर जाए तो उसको मलामत ना करो, इस पर तुमने वाह वाह करनी है, तुम्हारे पड़ोस में सब कुछ लुटता रहे, तुमने कुछ नहीं करना, इमाम ज़माना ने करना है। ऐसे बेहिस बनाने का इंजेक्शन, वो भी दीन के नाम पर, जो कि जो सोए हुए को जगाने आए, उसके उस दीन को ऐसा बना के बयान करो कि वो समझे हमारा काम ही नहीं है, हमारा काम है बस हमने कुछ रसूमात अदा करनी है, थोड़ा सा वो अटेंड करनी है और उसके बाद हमारे गुनाह भी माफ़ है और जनाब ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, इस आरजुओं की दुनिया में मगन कर दो लोगों। आप देखें इधर फिरौन के मुकाबले में मूसा क्या कर रहे हैं, और इसके साथ ही जो अगली दास्तान है वो इब्राहिम की है, और हज़रत इब्राहिम कितने थे, बिल्कुल नौजवान, तीन एज थी हज़रत इब्राहिम की, अल्लाह जिसकी मिसाल दे रहे हैं कि अल्लाह ने क्या किया, हज़रत इब्राहिम ने क्या किया, अपनी पूरी कौम के मुकाबले में आके खड़े हो गए। आप सोचें अल्लाह की दास्तानें क्यों, इस तरह की चीज़ें क्यों बयान करते हैं? अल्लाह चाहता है कि कुरान से ये जज्बा लेकर ये जज्बे वाले लोग पैदा हों, और जो नहीं ये बातें बताते हैं वो ये चाहते हैं कि ना पैदा हो, ना पैदा हो, जबकि अल्लाह चाहता है कि जज्बे वाले पैदा हो। अल्लाह ने मरियम लोगों के किस्से सुनाए ही नहीं है, अल्लाह ने बड़े बड़े जो मारके हैं, बड़ी बड़ी जंगे हैं, जो हक वालों ने, अल्लाह के नुमाइंदों ने, उनके साथियों ने बड़े बड़े ताकतवरों से, नमरूदों से, फिरौनों से लड़ी है, अल्लाह ने वो बताई कि एक बंदा आता है और आकर कहता है कि तुम, मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए पैगाम लाया हूं, तुम जो कर रहे हो गलत हो, पूरी कौम खिलाफ हो जाती है, वो मुसीबतें बर्दाश्त करता है, वो सब्र करता है। हजरत नूह को आप देखें, अल्लाह ने बयान की 950 साल, 950 साल, हमारे यहाँ तो 95 साल भी उम्र हो जाए तो मतलब बहुत ही कम होता है कि 95 को पहुँचे, वो 950 साल अपनी कौम के ताने सुन सुन के, उनकी तकजीब, उनका जुटाना, अल्लाह किस्सा क्यों बयान करता, ताकि तहमुल पैदा हो, सब्र पैदा हो, और इस पर ईमान रहे कि बिल आखिर अल्लाह ने हक की मदद करनी है। लेकिन मैं घर में बैठूँ अल्लाह की करेगा, ये यहूदी फिक्र है, मैं मैदान में रहूं, मैं बर्दाश्त करूं जो उस रास्ते में आता है और अल्लाह ने मेरी मदद करनी है, ये ईमान है। लेकिन मैं घर बैठूँ, अल्लाह ताला इंशाल्लाह ज़रूर करे, इमाम ज़रूर फरमाएंगे और वो सारा कुछ सफाई कर देंगे। फिर जब वो फतह का जश्न मनाएंगे तो वहाँ पे बूफे लगाएंगे, तो वहाँ पे मैं भी चला जाऊँगा खाने के लिए। व अंजैना मूसा व मन माअहू अजमाइन, और हमने निजात दी मूसा को और जो उसके साथ थे सारे के सारे। तुम अगरकनल आखरीन, और उसके बाद हमने दूसरों को गर्क कर दिया, कमज़ोरों को निकाल लिया, ताकतवरों को हमने गर्क कर दिया। इन नफीदालिकल आयतन, अब देखें कुरान का कहता है, ये नतीजा है कुरान, इसमें यकीनन एक निशानी है। आप सोचें, आप गौर करें, इसका क्या मतलब है? इस दास्तान में एक निशानी है। क्या निशानी है? बातिल के खिलाफ खड़ा होने, क्याम करने की, अल्लाह पे तवक्कुल करने की। चाहे बातिल फिरौन जितना ताकतवर हो, और इधर दो बंदे खड़े हो सिर्फ फटे पुराने कपड़ों में और फिरौन को चैलेंज कर रहे हो, इसमें निशानी है। फिर अल्लाह मदद करता है, इस किस्से में निशानी है। लेकिन वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन, लेकिन इसके बावजूद उनमें से अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे। व इन रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और ए रसूल यकीनन तेरा रब अजीज है और रहीम है। ये दो सिफात का क्या मतलब है? अजीज नाकाबिले शिकस्त, अगर गिरफ्त करने लगे तो फिर उसकी गिरफ्त से कोई छुड़वाने वाला नहीं होता। अगर पकड़ने लगे, सजा देने लगे, तो फिर मत सोचना कि तुम्हें कोई आके हेल्प करेगा। इन रब्बका लहुवल अजीज, वही होगा जो उसने फिरौन के साथ किया। लेकिन अगर कोई पलट के आना चाहे, अर्रहीम, फिर वो दायमी रहमतों के साथ उसका इस्तकबाल करता है, अपनी नरमी अपनी मोहब्बत के साथ उसका इस्तकबाल करता है। वो तो मूसा से कह रहा है, फिरौन से भी नरमी से बात करना, तुम्हारे लहजे से ना भड़क जाए वो, तुम्हारी तरफ से हिदायत का पूरा एहतमाम होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर वो बदबख्ती पे है तो फिर करता रहे। आयत नंबर 69, वतलु अलैहिम नबा इब्राहिम, और इन्हें इब्राहिम का वाकया पढ़कर सुना दीजिए। वतलु, ये वही लफ्ज है जिसे हम तिलावत कहते हैं, पढ़कर सुना दीजिए इनको इब्राहिम का नबा, बड़ी खबर, बड़ी न्यूज़ इब्राहिम की, दास्तान सुनाइए। इद काल ली अबीहि व कौमिहि मा ताबुदून, एक 14-15-16 साल का लड़का, जब उसने अपने बाप, और इसके ब्रैकेट्स में वजाहत के लिए चचा लिखा है, जो कि रिवायात अहले बैत बताती है कि ये असल में चचा था, और अब का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में बाप के लिए भी इस्तेमाल होता है असालतन, लेकिन चचा के लिए भी इस्तेमाल होता है। और ये शख्स चूँकि हज़रत इब्राहिम का चचा था, चूँकि इसने पाला हुआ था, तो ये हज़रत इब्राहिम का बाप ही कहलवाता था। तो उन्होंने अपने बाप यानी चचा और अपनी कौम से कहा, मा ताबुदून, तुम किसे पूछते हो? उन्होंने जवाब दिया, वो समझे शायद इब्राहिम जो है उनको पता नहीं है, तो वो समझना चाह रहे हैं। तो उन्होंने स्टार्ट यहाँ से लिया, तुम ये जो आप पूछते हो किस चीज़ को पूछते हो? कालू, वो कहने लगे, नअबुदु असनामन, हम बुतों को, असनाम जमा है सनम की, स्वात नून मीम, और सनम अरबी ज़ुबान में किसे कहते हैं? बुत को। उर्दू में जो हम बुत का लफ्ज़ बोलते हैं, अरबी में वो सनम, असनाम उसकी जमा है। कालू, कहने लगे, न अबुदु असनामन, हम बुतों को पूजते हैं, फनदल्लु लहा आकिफीन, और हम इन्हीं के साथ लग के बैठते हैं, यानी इन्हीं के साथ हमारी सारी आरजुएं वाबस्ता हैं, इन्हीं के सुपुर्द हैं हमारे सारे काम, हम इनके साथ। आकिफीन का लफ्ज़ वही है जिससे एतकाफ़ का लफ्ज़ भी निकला हुआ है। एतकाफ़ क्या होता है? कि एक जगह पर बैठ जाना एक ख़ास कसद इबादत से। तो ये हज़रत इब्राहिम से कहते हैं कि हम इन बुतों के पास मसलन बैठे रहते हैं, हम इनके मुजावर हैं, हम इनकी इबादत करते हैं। फाला, अब अगला सवाल किया, हल यस्मऊनकुम इज़ तदऊन, जब तुम इनसे दुआएं मांगते हो तो ये सुनते हैं। औ यन्फ़ऊनकुम औ यदुर्रून, या तुम्हें कोई फ़ायदा पहुँचाते हैं या तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाते हैं। आलू, इब्राहिम के जवाब में कहने लगे, बल वजदना आबाअना कदालिक यफ़अलून। सोना जवाब, हमने अपने बाप दादा को यही करते देखा है। दलील, हम और आप यकीन करें, बहुत बड़े बड़ी तादाद में लोगों का दीन दीन अबाव अजदाद वाला दीन होता है। बरेलवी क्यों बरेलवी है? क्योंकि उसके माँ बाप बरेलवी है, ना कि किसी दलील से बरेलवी है। दलीलें बनाई होती हैं लेकिन अपनी वादी में होती है। शिया क्यों शिया है? अक्सरियत, क्योंकि माँ बाप शिया थे। देवबंदी क्यों देवबंदी है? अहले हदीस क्यों अहले हदीस है? आबाओ अजदाद का, तभी इस दीन में जान नहीं होती। ये वाला दीन फितने फसाद तासुब की वजह से, कि पार्टीबाजी की वजह से लड़ा तो सकता है आपस में, लेकिन ये वाला दीन अमल का जज्बा कम ही पैदा करता है। अमल का जज्बा वो दीन पैदा करता है जिसे हमारी अकल ने शऊर ने कबूल किया हो कि यही निजात का बेस्ट रास्ता है, यही काम जो अल्लाह ने डिमांड किए हैं ये बेस्ट काम है। ये अकल व शऊर से कबूल किया हो, ना कि बाप दादा से। तो इन्होंने जब हज़रत इब्राहिम ने कहा कि ये तुम दुआएं मांगते हो ये सुनते हैं, कोई फ़ायदा पहुंचाते हैं कोई नुकसान पहुंचाते हैं, बताओ तो सही। तो उन्होंने कहा कि कालू बल, यार हमारे से ज़्यादा सवाल ना करो, मसला ये है कि हमारे बुज़ुर्ग ये करते थे और वो बड़े समझदार थे, पागल थोड़ी थे वो, उनके पास कोई दलील तो होगी ना, तो वो ऐसा करते थे तो हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। काला, अब हज़रत इब्राहिम ने थोड़ा गेयर चेंज किया, थोड़ा सा आगे बढ़े, अग्रेसिव थोड़े। काला अफ़रई तुम माँ कुन तुम ताबुदून, ये जो तुम जिनकी इबादत करते रहे हो कभी गौर किया तुमने? अन तुम आबाकुम, अब उनके आबा को भी शामिल कर लीजिए। उन्होंने कहा था ना हमारे बाप दादा ये करते थे, तो पहले तो पूछा था तुम किसकी इबादत करते हो, जब उन्होंने कहा बाप दादा तो अब हज़रत इब्राहिम ने अपने सवाल में उनको भी ले लिया। अन तुम व आबाउकुम अल अक़दमून, तुम भी और तुम्हारे बाप दादे भी, कभी गौर किया उन्होंने कि तुम जो है किसको तुम पूछ रहे हो? और अगली बात क्या कही, फ़इन्नहुम अदुव्वुन ली, तुम्हारे तो होंगे खुदा मेरे दुश्मन। इल्ला रब्बल आलमीन, सिवाय रब्बल आलमीन, बाकी तुम्हारे ये जो बुत बुत हैं दुश्मन, तुम इनको अल्लाह का शरीक बनाते हो, रब्बुल आलमीन का शरीक बनाते हो, मेरे ये दुश्मन हैं। इल्ला रब्बल आलमीन, अब बहुत ही ईमान अफरोज और तौहीद पुख्ता करने वाले जुमले हैं इसके बाद हज़रत इब्राहिम के, जो उन्होंने अपनी कौम से बोले थे। तवज्जो से सुन, फरमाया कि ये जो बुत हैं ये तो यकीनन मेरे दुश्मन हैं। इल्ला रब्बल आलमीन, मेरा कौन है? सिर्फ रब्बुल आलमीन। कौन रब्बुल आलमीन? अल्लज़ी खलकनी फहुव यहदीन, वो अल्लाह, वो रब्बुल आलमीन जिसने मुझे पैदा किया। अब ये जो अल्लाह की तरफ नस्बत दे रहे हैं, बुतों को रिजेक्ट कर रहे हैं, यानी ये सारे काम तुम्हारे बुतों में से कोई नहीं करता, मेरा रब्बुल आलमीन करता है। और वो क्या क्या करता है? अल्लज़ी खलकनी फहुव यहदीन, वो जिसने मुझे खल्क किया और मेरी हिदायत करता है, मेरी रहनुमाई भी वही करता है। वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, और वो रब्बुल आलमीन के वही मुझे खिलाता भी है और मुझे पिलाता भी है। व इदा मरिज़्तु फहुवा यशफीन, और जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे वही शिफा देता है, ना ये तुम्हारे बुत इनके पास तुम बैठते हो। वहिदा मरीज तो फहुआ यशफीन, और जब मैं मरीज़ होता हूँ तो मुझे वही शिफा देता है। वल्लज़ी मीतुनी थुम्मा युहयी, और वो कि जो मुझे मौत देगा फिर दोबारा। अल्लज़ी अतमा, अब वो जादूगरों को याद कर ईमान लाए थे कि हमें तो एक ही तमा है कि हमारा रब हमारी खताएं बख्श दे। ये इब्राहिम क्या कह रहे हैं आयत नंबर 81 में, वल्लज़ी अतमा, और वो रब्बुल आलमीन कि जिससे मुझे लालच है, जिससे मुझे ये तमा है, میری آرزو ہے اَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ کہ جب میں قیامت کے دن جزا کے دن اس کے سامنے جاؤں تو وہ میری کہ مجھے اللہ سے امید ہے. حضرت ابراہیم کو بھی اس طرح جنت کنفرم نہیں تھی جس طرح آج کل ہمیں کنفرم. حضرت ابراہیم بت شکن کو جس تعریف سے قرآن بھرا پڑا اس کو بھی اتنی جنت کنفرم ہے کہ اللہ میری خطائیں معاف کر دے. ابھی اس بحث کو سائڈ پہ رکھیے کہ وہ تو معصوم ہے, کون سی خطائیں کہہ رہے ہیں. وہ اللہ کی عظمت کی نسبت اپنی کوتاہیوں کو خطائیں, اپنے کاموں کو کوتاہی سمجھتے ہیں اور اس کوتاہی پہ استغفار کرتے ہیں. یعنی ان سے بیسٹ اللہ کی اطاعت کسی نے نہیں کی, لیکن جب وہ بذات خود اپنے پر جس عظمت کی وہ معرفت رکھتے ہیں اللہ کی, جب اسے دیکھتے ہیں تو ان کو اپنے کام ہیچ لگتے ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ جو تیرے شایان شان تھا وہ ہم نہیں کر سکے. اور یہی بات ائمہ کی دعاؤں میں بھی ہے, ما عبدناک حق عبادتک, تیری تو جس عبادت کے لائق تھا جو تیرا حق بنتا تھا ہم نے تیری وہ عبادت نہیں کی. اور یہ ایسے اوپر اوپر سے ایکٹنگ کر کے نہیں کہتے, اپنے حقیقی احساس کے مطابق کہتے ہیں. اور جب یہ کہتے ہیں تو پھر اسی کو اپنی کوتاہی بھی سمجھتے ہیں اور اسی پہ اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں, روتے بھی ہیں, سجدوں میں پڑھ کے گڑ گڑاتے بھی ہیں. حقیقت میں ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے, لیکن بعض نادان لوگ جنہوں نے اہل بیت کو کوئی اور ہی مخلوق بنا دیا غلوف کر کر کے, پھر ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی, کہتے وہ ہمیں دکھانے کے لیے, ہمیں سکھانے کے لیے روتے ہیں. آدھی آدھی رات رسول اللہ, ان کی زوجات روایت کرتی ہیں کہ ہم کہتی تھی کہ آپ کو اللہ نے کہا ہے آپ کی ہر چیز معاف ہے, پھر بھی آپ راتوں کو اتنا روتے ہیں, اتنا کھڑے رہتے ہیں. تو آگے سے فرماتے تھے کیا میں اللہ جب اس نے مجھے اتنا دیا ہے تو میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں, میں اس کی نعمت کا شکر نہ کروں. وہاں پہ کس کو دکھاتے تھے؟ دکھاتے تو تب ہے نا کہ ساری مسجد نبوی میں عوام کو بلا لیتے اور وہاں پہ گھنٹوں عبادت کرتے, روتے جی سب کو دکھا رہے, لیکن وہ اکیلے ہوتے, تنہائی میں ہوتے. ان کے گھر کی خواتین کہتی تھی اس طرح عبادت کرتے, آئمہ نے رسول اللہ کی عبادت. تو بعض نادان لوگوں نے اپنے ذہن میں پہلے غلط تصور بنایا رسول اللہ کا, آئمہ کا, اور اس کے بعد کہا کہ اب اس میں تو معافی مانگنا فٹ نہیں آتا تھا, رونا اور استغفار تو فٹ نہیں آتا تھا. انہوں نے کہا یہ ہمیں دکھانے کے لیے کرتے ہیں, ورنہ یہ تو اس سے بلند ہے کہ یہ روئے, اور جبکہ وہ حقیقت میں ایسا کرتے تھے. روایت ہے رہبر انقلاب اسلامی نے, وہ جو ان کی تقاریر ہے, ابھی ایمان کے نام سے چند کتابیں, ایک پہلی کتاب ایمان ہے, اس میں یا اس سے اگلی توحید والی میں, مجھے شاید مکس کر رہا ہوں, ان دونوں میں سے ایک کتاب میں, ظاہراً اسی ایمان والی کتاب میں, وہاں پہ لکھتے ہیں کہ امام سجاد عبادت کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, دیر تک لمبی عبادت کی. ایک شخص آتا ہے اور وہ بڑی حیرت سے امام کو دیکھتا ہے اپنی عقیدت کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول کا فرزند, امام حسین کا بیٹا, جناب زہرا کا بیٹا, وہ اس طرح روئے جا رہا ہے, اس طرح روئے جا رہا ہے. بیٹھا رہتا ہے, انتظار کرتا ہے. جب امام دیر کے بعد اپنی عبادت سے فارغ ہوتے تو وہ بندہ قریب آتا ہے اور امام سے کہتا ہے کہ مولا جد رسول اللہ, آپ کی دادی بی بی زہرا, آپ کے دادا مولا علی, آپ کے والد امام, آپ اس طرح رو رہے. امام سجاد کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں دع حدیث ابی و جدی, مت نام لے میرے جد کا اور میرے, الجنت للمتیعین, جنت اللہ کے اطاعت گزاروں کی, باپ دادوں کی وجہ سے نہیں. وہ جو فرما رہے ہیں یہ روایات, یہ ان کی سیل زیادہ نہیں ہوتی, مارکیٹ زیادہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس لیے یہ بولی بھی نہیں جاتی. اور ایسی شخصیات بنا دیا آئمہ کو کہ ایک عام بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ میرے آئیڈیل ہیں اور مجھے فالو کر رہے ہیں. کہتے ہیں وہ کہاں توبہ, ہم گناہگار کہاں. یہ بات جیسے اللہ کو نہیں پتا تھی جس نے ان سب کے سردار رسول اللہ کے بارے میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اگر میری مرضی کی زندگی, بہترین زندگی چاہتے ہو تو میرے رسول کو اپنا آئیڈیل بناؤ, اسے فالو کرو. اللہ کو نہیں پتا تھا وہ کہاں یہ کہاں, اور اس کا مطلب یہ کہ فالو نہیں کر سکتے جیسے آج کل لوگ بہت کرتے. اور پھر ایسے لوگ عوام کے جذبات سے کھیلتے ہیں کہ توبہ, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان جیسے بن جائیں. بات گھما کے کہاں سے کہاں, ان جیسا کوئی نہیں بن سکتا. फॉलो करना और है, उन जैसा बनना और। फौरन अवाम के दिमाग को जैसे फिरौन घुमाता था ना, तो ये लोग भी घुमा देते ताकि पब्लिक उधर चली जाए। अच्छा ये पहले सोच रहे हो कि मैं रसूलुल्लाह को की सीरत को उस्वा बनाऊं, लेकिन वो घुमा देते दिमाग, कहता तौबा तौबा तौबा, वो कहाँ हम कहाँ, तो ये तो वो कर रहा है, तुम्हें कह रहा है कि ये इसका अकीदा ये है कि दूसरे लोग भी रसूलुल्लाह जैसे बन सकते हैं। तो अवाम का बेड़ा वहाँ पर घर को जाता है, उल्टा जो बात समझनी थी उससे दुश्मनी हो जाती है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वल्लज़ी अतमाउ, ये इब्राहिम कह रहे हैं कि जिससे मुझे तमा है, मुझे लालच है उस रब्बुल आलमीन से कि वो क्या करे, अय्यग़फिर ली, कि वो मेरी मगफ़रत करे, मुझे माफ़ करे, क्या ख़तीअती, मेरी ख़ताओं को, यौमद्दीन, क़यामत के दिन। आयत नंबर 83, रब्बी हबली हुक्मन, ए मेरे रब मुझे हिकमत, मुझे दानाई अता फरमा, व अलहिकनी बिस्सालिहीन, और मुझे अपने सालेह बंदों में शामिल कर दे, सालिहीन के गुरोह में शामिल कर दे, वजअली लिसान सिदकिन फिल आखिरीन, और मेरे लिए बाद में आने वाले लोगों में लिसान सिद्क करार दे, यानी मेरा अच्छा जिक्र बाद में आने वाले लोगों में ऐ परवरदिगार बना दे। और अल्लाह ने क्या दुआ कबूल की, कुरान मजीद में यही जुमले इब्राहिम के अल्लाह ताला ने अब तक अपनी आखिरी किताब का हिस्सा बना दी, वजअली लिसान सिदकिन फिल आखिरीन, वजअली मिन वरसति जन्नतिन नईम, और मुझे नेमतों वाली जन्नत के वारिसों में करार दे। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे जितनी उनको भी कन्फर्म नहीं थी, आजकल के मुख्तलिफ मसालिक के उलमा जितने अवाम को जन्नत कन्फर्म करके देते हैं, इतने नबियों के कलाम से भी नहीं पता चलता कि उन्हें कन्फर्म थी। वग़फिर ली अभी, और मेरे बाप को यानी उस चचा को बख्श दे, चूँकि हज़रत इब्राहिम को जब पहली दफ़ा उसने डांटा था तो इब्राहिम ने कहा था कि मैं अपने रब से आपके लिए माफ़ी मांगूंगा, तो ये उसी वादे की को पूरा कर रहे हैं। वग़फिर ली अभी, मेरे बाप को यानी चचा को बख्श दे, इन्नहू काना मिनद्दालीन, यकीनन वो गुमराहों में है, भटका हुआ है। अगली दुआ, वला तुख़्ज़िनी यौम युबअथून, तवज्जो फरमाइए, दुआ कौन मांग रहा है, इब्राहिम, दुआ क्या मांग रहा है, वला तुख़्ज़िनी, मुझे रुस्वा न करना, मुझे रुस्वा न करना, यौम युबअथून, जिस दिन इंसानों को दोबारा उठाया जाएगा, क़यामत के दिन, ए परवरदिगार, ए मेरे रब, मुझे रुस्वा न करना। कौन सा यौम युबअसून, यौम ला यनफ़ऊ मालुन वला बनून, जिस दिन न माल काम आएगा न बेटे काम आएंगे। अरब बेटियों को पसंद नहीं करते थे, इसलिए अल्लाह बेटियों का जिक्र नहीं करते, अगर बेटियों का जिक्र वो कहेगा ना काम आए, बेटियाँ चाहिए भी नहीं हमें। लेकिन अरब उस मुआशरे में ये दो चीज़ें जिसके पास ज़्यादा होती थी, जितनी होती थी उसको उतना सआदतमंद, उतना खुश नसीब समझा जाता था। तो हज़रत इब्राहिम क्या फरमा रहे हैं, यौम ला यनफ़ऊ मालुन वला बनून, जिस दिन न माल काम आएगा न बेटे काम आएंगे, उस दिन मुझे रुसवा न करना। क्या काम आएगा, इल्ला, ये आखिरी आयत है आज के लिए, आयत नंबर 89, इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम, सिवाय वो शख्स कि जो कल्ब सलीम के साथ अल्लाह की बारगाह में आएगा। कल्ब सलीम, कल्ब सलीम क्या है, उसूल काफ़ी में रिवायत है, हुजूर ज़ैन नहीं है मुझे, या इमाम सादिक से सवाल हुआ या इमाम बाकिर से अलैहिमस्सलातु वस्सलाम, इमाम से सवाल किया। ये आयत की तिलावत की किसी शख्स ने और फिर इमाम से सवाल किया कि मौला ये जो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि सिर्फ वो बचेगा जो कल्ब सलीम लेकर आएगा, तो ये कल्ब सलीम क्या होता है, सलीम का माना क्या है, सालिम, सही, तो बीमार ना हो, जिसमें गड़बड़ ना हो। तो पूछा कि कल्ब सलीम क्या होता है, तो इमाम ने जवाब दिया कि वो दिल जिसमें राई बराबर भी अल्लाह के साथ किसी को शरीक न बनाया गया हो, शिर्क न किया गया हो। जिस दिल में शिर्क हो या शक हो शिर्क का, फहुआ साकितुन, ये लफ्ज़ मुझे याद है, फहुआ साकितुन, तो वो साकित। और ये वही बात है जो कुरान ने की हुई है कि अल्लाह दूसरे सारे गुनाह जिसके चाहेगा माफ़ कर देगा, लेकिन अगर कोई शिर्क के साथ अल्लाह की बारगाह में आएगा, किसी को अल्लाह का शरीक समझता हुआ, तो उसको ये ऐसा जुर्म है कि अल्लाह की ज़ात उसे माफ़ नहीं करेगी। बाकी जितने गुनाह हैं उनमें कवायद व ज़वाबित हैं, अल्लाह जिसे चाहेगा जो चाहेगा माफ़ कर देगा, कर सकता है यानी। लेकिन शिर्क के मामले में जो इसके साथ आएगा, अल्लाह उसको हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा। यौम ला यन्फ़ु मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाहा बिकल्बिन सलीम, सिवाय उसके जो अल्लाह के पास आएगा कल्ब सलीम लेकर। व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन, और जन्नत मुत्तकीन के करीब कर दी जाएगी इंशाअल्लाह, अल्लाह ने तौफीक दी। तो अगले दर्स में इसको जारी रखेंगे। एक सलवात पढ़े मुहम्मद व आले मुहम्मद। परवरदिगार आलम की बारगाह में दस्ते दुआ बुलंद करते हैं। परवरदिगार या अल्लाह या रहमान या रहीम या रब्बल आलमीन, बिहक कुरान करीम व बिहक मुहम्मद व आले मुहम्मद, इस माह मुबारक रमज़ान में तेरी किताब कुरान करीम से मजबूत और मुहकम हिदायत लेने का, गौर व फिक्र करने का रिश्ता बनाने और उस्तवार करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार इस किताब को पढ़ने को हमारी ज़िंदगियों में शामिल फरमा। परवरदिगार कुरान से और मुहम्मद व आले मुहम्मद से कमा हक्कुहु तमस्सुक की तौफीक हम सबको अता फरमा। ए परवरदिगार, इस महफिल में हाजिर जितने भी मोमिनीन हैं, दिल में कोई हाजत या परेशानी रखते हैं, तो अलीम उन बिदात सुदूर और अला कुल्ल शैइन कदीर है। परवरदिगार मोमिनीन की मुश्किलात को आसान फरमा, हम सब के रिज़्क़ के हलाल में वसअत व बरकत अता फरमा। तेरी वाहदहू ला शरीक ज़ात के सिवा हमें किसी और का मोहताज न बना। परवरदिगार हमारे मरहूमीन के को जो तेरी बारगाह में हाजिर है, अपनी खसूसी रहमतों में जगह अता फरमा। परवरदिगार हमारे अजीज़ हमारे अजीज़ वतन पाकिस्तान पर और पाकिस्तानी कौम पर रहम फरमा, और इस वतन के कल को इसके आज से बेहतर करार दे। ऐ परवरदिगार हम सब का खात्मा खैर पर और ईमान पर और अपनी रजा पर फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।